ॐ शांति, ॐ शांति। बाबा की मुरली क्या है? आज बाबा ने कहा, अभी गीत सुना, बाबा की मीठी मुरली क्या है? अमृत का प्याला। तो रोज सवेरे हम सब अमृत का प्याला पीते हैं ना? ये अमृत हमें अमर बना देता है। तो आज रविवार है और हम सब अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने फिर से खजानों की याद दिलाई है। ज्ञान गुण शक्तियां तो है ही, लेकिन समय और संकल्प हमारे कितने बड़े खजाने हैं। हमें उनको व्यर्थ तो गंवाना ही नहीं है, परंतु सदा उनको सफल करना है, तभी सफलता को प्राप्त करेंगे। और ये मुरली नए साल की मुरली है। आज भी 2024 जा रहा है, 31 को होगा, लेकिन आज भी बहुत दूर नहीं है, 31 दो दिन पड़े हैं, लेकिन ये 2024 का साल जा रहा है और 2025 का साल आ रहा है। तो ये जो मुरली है ये 2002 जा रहा है और 2003 आ रहा है, तो दोनों सालों का संगम है। तो बाबा ने नए साल की भी मुबारक दी है, बाबा ने 3 मुबारक दी है, नया जीवन, नया युग और नया साल, त्रिमूर्ति मुबारक बाबा ने दी है। तो बहुत सुंदर मुरली हम सुनेंगे बाबा की। आज 29/12/2024 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 31/12/2002 की। वैसे तो 2003 की मुरलियां चल रही है, पर ये रख दी थी ताकि आज सुना सके नए साल से पहले। इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। हमारी मुरली भले 2002 की है, लेकिन ये मुरलियां ऐसी है, जब भी सुनो, जब भी पढ़ो, कितनी प्रासंगिक होती है, उसी समय की ये होती है, ऐसे महसूस होता है। तो आज नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। ये साल यही करना है। आज नव युग रचयिता, नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो व नव युग मनाने के लिए आए हो। आज तो बहुत बड़ी सभा है, नीचे से भी कब बहुत आ गए हैं। हाथ उठाएं जो नीचे से आए, देखो जरा पीछे देखो तो कितने आए, आज सवेरे आए। हाँ देखो ठंडी है यहाँ, गर्म कपड़े तो लाए होंगे, तो सब भाग भाग करके आए। महाराष्ट्र, मधुबन पांडव भवन में मुरली सुनने लिए। तो बाबा कहते हैं, आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो व नव युग मनाने के लिए आए हो। नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन, नव युग और नव वर्ष तीनों ही मना रहे हो। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं, नव जीवन, नव युग, नव वर्ष तीनों की मुबारक दे रहे हैं। नव वर्ष की एक दो को मुबारक तो देते हैं और साथ में दुनिया में भी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर करते रहते ना, और साथ में कोई न कोई गिफ्ट भी देते हैं, न्यू ईयर गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट देते हो ना, लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन से गिफ्ट दिए? बाबा भी हमको गिफ्ट देते हैं, पर हमारी बाबा हमको ऐसी गिफ्ट देते हैं जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। तो कौन सी गिफ्ट देते हैं बाप दादा ने आप सबको? कौन सी गिफ्ट दी है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। सत्य को, स्वर्ग को हथेली पर लाया है गिफ्ट के रूप में हमारे लिए। गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना? हाँ भाई, मिल गई है ना? हाथ उठाओ, मिल गई है या पता नहीं मिलेगी या नहीं? हाँ, मिल गई है। और बाबा ने बहुत हाथ उठवाए है, सब हाथ उठाना तैयार है ना? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है, तो सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना। जिस गोल्डन दुनिया में, नव युग में क्या होगा? सर्व प्राप्तियां हैं। याद है अपना राज्य? कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई दे नहीं सकता। जहां अप्राप्ति का कोई नाम निशान नहीं होगा, लिस्ट निकालो कितनी प्राप्तियां होगी, तो फिर थक जाएंगे, इतनी प्राप्तियां होगी, क्योंकि अप्राप्ति का कोई नाम निशानी नहीं। वो कह दिया मना, कोई कमी नहीं, तो गिनती भी क्या करेंगे। तो बाबा कहते हैं, कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई दे नहीं सकता। सारे विश्व में अगर कोई बड़े ते बड़ी सौगात भी देंगे, तो भी क्या देंगे? बहुत बड़ी सौगात उनको दे, चलो मकान लेके दे, गाड़ी लेकर दे, या जो भी, अभी क्या इनसे बड़ी सौगात देंगे? तो बड़े ते बड़ा, हाँ, क्या देंगे सौगात? फिर भी कलयुगी दुनिया की चीजें जो विनाशी है, और बड़े ते बड़ा ताज व तख्त भी देंगे? चलो राजा है तो अपने बेटे को नया ताज देगा, नया तख्त देगा, तख्त पर बिठाएगा, तो बड़े ते बड़ा ताज व तख्त भी दे देंगे। तो जब स्थापना हुई थी, बाबा याद दिला रहे हैं, क्योंकि सामने सब दादियां बैठी है, उस समय सब दादियां लगभग साकार में थी, ये बाद में धीरे धीरे कैसे अव्यक्त हुई, तो आगे आगे बैठे हैं स्थापना वाले, तो सब दादियां बैठी थी। तो जब स्थापना हुई थी, तब आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त दे दे, तो आप जाएंगे लेने? बाबा ने यहाँ तो कह दिया, क्वीन एलिजाबेथ अगर आपको दे दे, कहेगी आओ आपको हम ताज देते हैं, तख्त देते हैं, तुम इंग्लैंड की रानी बन जाओ, तो आप जाएंगे? बाबा के पूछते हैं, तो आप जाएंगे? याद है ना? तो क्या कहती थी बहनें? तो बच्चे कहते थे, इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? हाँ, कई बार बाबा कहते, वो तो कांटों का ताज है। हाँ, बेचारी रानी को कितने क्या नहीं, परिवार के द्वारा भी कितने उनको जैसे कांटे ही लगे ना, कितना दुख मिला। तो बाबा कहते हैं, तो बच्चे कहते हैं, इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो ये क्या है? कलयुगी दुनिया का ताज और तख्त ये तो कांटों का ताज है। तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती है। कई बच्चे पूछते हैं मां क्या क्या प्राप्ति होगी, क्या क्या प्राप्ति होगी, तो बाप दादा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, गिनते जाओ पूरी नहीं होगी लिस्ट, लेकिन सारे सार रूप में क्या कहेंगे, अब थक जाएंगे लिख लिख करके, तो सार रूप में क्या कहेंगे, अप्राप्त कोई वस्तु ही नहीं जो जीवन में चाहिए, वो सब प्राप्तियां होगी, कोई ऐसी अप्राप्त वस्तु नहीं होगी जो जीवन में चाहिए। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो, अधिकारी हो ना, डबल विदेशी अधिकारी है तो डबल विदेशी ने हाथ उठाया और हिलाया, सभी राजा बनेंगे, बाबा ने उनसे पूछा तो इतने तो फिर सब ने हाथ उठाया हम राजा बनेंगे, तो फिर बाबा कहते तो इतने तख्त तैयार करने पड़ेंगे अगर सब राजा बन जाएंगे तो तख्त इतने तैयार करने पड़ेंगे, तो बाप दादा कहते हैं वो तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है सत्युग में तो वो है तख्त, लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। इस समय जो स्वराज्य का हमें तख्त मिला है, बाबा कहते हैं वो उस सत्युगी तख्त से कम नहीं है। अभी भी राजा हो ना, प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, राजा हो या प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो, एक ही बाप है जो फलक से कहते हैं, भगवान के सिवा ये शब्द कोई नहीं कह सकता, एक ही बाप है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। जैसे लौकिक में कोई बच्चे कहते भी होंगे, पिता कहते भी होंगे मेरा राजा बच्चा है, राजा बच्चा, पर कितने बच्चे होंगे, चार पांच, और यहाँ तो सारे बाबा के बच्चे राजा बच्चे हैं। राजा हो ना, राजयोगी हो या प्रजा योगी हो, राजयोगी मने राजा बच्चा या प्रजा योगी हो, इस समय सब द्वितत्व निशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हो। इतना रूहानी निशा रहता है ना, क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। कैसे पता चलेगा कि भविष्य का राज्य पद मिलेगा, जब इस समय संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। ये संगम युग बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा और संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं, हम बच्चे ही जानते हैं, दुनिया वाले तो कलयुग ही समझते ना, तो संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हैं, तो बहुत खुशी होती है और अब समझते हम संगम युग पर है, भगवान हमारे साथ है, इतना खजाना हमें दे रहे हैं, कितने माला माल हो गए हैं, तो खुशी खुशी में हम क्या कहते हैं, तो कहते हो ये मौजों का युग है, कहते हो ना मौजों का युग है। क्यों क्यों ये संगम युग मौजों का युग है, क्योंकि यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है। क्या नई प्राप्तियां है, कोई कमी नहीं, बाबा कितना हमें ऊंचा बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है, कारण सबसे बड़ी मौज कौन सी है, परमात्म मिलन की मौज, वहां परमात्म मिलन नहीं होगा सत्युग में, यहाँ सबसे बड़ी मौज है परमात्म मिलन की मौज, सारे कल्प में अभी मिलती है। संगम युग का एक एक दिन क्या है, मौज ही मौज है ऐसे, या कभी कभी उदासी का भी दिन आ जाता है। तो बाबा कहते हैं संगम युग का एक एक दिन क्या है, मौज ही मौज, मौज है ना, मौज है या मूंजते हैं, या तो मौज होगी या तो मूंजते होंगे, मूंजते तो नहीं हो ना, हर दिन उत्सव है, क्योंकि उत्साह है, उमंग है, उत्साह है, कि क्यों उमंग उत्साह है, कि अपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाए, ये उमंग है, सबको बाबा का संदेश दे, बाबा का बनाए, ये उमंग उत्साह है। तो सब सर्व उमंग उत्साह है कि अपने सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाए। सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना, यह करे यह करे यह करे, प्लान बनाते हो ना, क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरों को सुनाने के बिना रह नहीं सकते, वो पेट में पचेगा नहीं, मतलब वो अंदर जाए, अब अंदर ही नहीं रहेगा, जरूर बोलेंगे अगर कोई ऐसी प्राप्ति होती है तो। तो बाबा कहते हैं क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने के बिना रह नहीं सकते, इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी। सत्युग में हमें कैसी कितनी प्राप्ति होगी, उसका आधार क्या है, यहाँ कितनी प्राप्ति है, स्थूल बातों की प्राप्ति नहीं। बाबा पांच बातें मूल बताते हैं, तो उस बात में कई बातें बाबा बताते हैं, तो वो प्राप्ति है, माना सत्युग की सर्व प्राप्तियां हैं। इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी, अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। तो संगम युग अच्छा लगता है या सत्युग अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है भाई, क्या अच्छा लगता है, संगम युग अच्छा लगता है या सत्युग अच्छा लगता है, क्या कहेंगे? जो समझते संगम युग अच्छा लगता है तो उठाओ, अच्छा जो कहते सत्युग अच्छा लगता है वो भी है कोई, हाँ कोई नहीं है, नहीं एक हाथ उठा रहा है, दो हाथ उठा रहे हैं, अच्छा हाथ उठा रहे हैं, अब बाबा की सभा में जो किसी ने भी नहीं हाथ उठाया देखो। तो बाबा कहते हैं क्या अच्छा लगता है, संगम अच्छा है ना, सिर्फ बीच बीच में माया आती है, भले संगम अच्छा है कहते हैं लेकिन क्यों कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बीच बीच में माया आती है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हैं। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं, हम मुश्किल योग कैसे बनाते हैं, व्यर्थ संकल्प आते हैं या कुछ जो खजाने बाबा ने दिए उनका ठीक उपयोग नहीं करते हैं तो फिर वो मुश्किल योग हो जाता है। तो कई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं, है नहीं मुश्किल है नहीं लेकिन बना देते हैं, इसलिए फिर क्या कहते हैं, व्यर्थ संकल्प आते हैं या कोई अंदर मूंझ है तो फिर क्या कहते हैं, योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं, लेकिन बना देते हैं, वास्तव में है बहुत सहज, मुश्किल लगता है, जिसको मुश्किल लगता है हाथ उठाओ भाई, हाँ तो फिर हाथ उठाओ, जो जिनको मुश्किल लगता है, किसी को नहीं लगता है, अच्छा इतना सहज है। तो बाबा फिर पूछते हैं, अच्छा जिसको मुश्किल लगता है हाथ उठाओ, चलो सदा नहीं मुश्किल, कभी कभी मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ, देखो अभी हाथ उठ रहे हैं थोड़े, या है ही सहज, जो मुश्किल योगी है वो हाथ उठाओ, हर वक्त मुश्किल ही लगता है, योग लगता ही नहीं है, वो हाथ उठाओ, कोई नहीं है, तो उस समय भी किसी ने हाथ नहीं उठाया। माताएं मुश्किल योगी हो या सहज योगी हो, फिर बाबा ने माताओं से पूछा, माताएं बताओ मुश्किल योगी हो या सहज योगी हो, सहज योगी, कोई मुश्किल योगी है, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो बाबा ने कहा देखो सारी सभा में हाथ कैसे उठाएंगे, अंदर में थोड़ा लगता है लेकिन अब सभा में हाथ उठाए तो लोग कहेंगे अच्छा तुमको योग मुश्किल लगता है तुमने हाथ उठाया, तो हाथ ही नहीं उठाया लज्जा के मारे, सारी सभा में हाथ कैसे उठाएंगे, सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा, अब ये तो सभी कहेंगे, भले कहते हैं मुश्किल योग चलो थोड़ा थोड़ा है लेकिन मेरा बाबा तो फलक से कहते हैं ना, हाँ कहो फलक से, हाँ देखो कितने नशे से कहते हैं, तो सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा, मेरा बाबा है या दादियों का बाबा है मेरा बाबा है ना, हर एक कहेगा पहले मेरा, दादी जी बहुत हंसाती थी, दादी जी किसी से पूछती थी मेरा बाबा है या दादी का बाबा है, तो कहेंगे मेरा बाबा, दादी के नहीं नहीं मेरा बाबा, वो कहेंगे नहीं नहीं मेरा बाबा, तो ऐसे दादी हंसाती थी। तो मेरा बाबा है ना, हर एक कहेगा पहले मेरा, ऐसे है। ये सिंधी लोग सभी बैठे हैं, अधिकतर जो लेगोस लंदन आदि से कई देशों से सिंधी आते थे 31 दिसंबर बाबा के साथ मनाने, तो ये सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना, तो बाबा उनसे पूछते हैं मेरा बाबा है या दादी जानकी का बाबा है, क्योंकि दादी जानकी ने उनकी बहुत पालना की है। दादी प्रकाशमणि का है, किसका बाबा है, मेरा है ना, सारा दिन क्या याद रहता है मेरा ना, तो मेरा मेरा सारा दिन में कितनी बार मेरा मेरा शब्द कहते हैं। तो बाप कहते हैं बहुत सहज युक्ति है, जितनी बार मेरा मेरा कहते हो सारे दिन में कितनी बार मेरा शब्द कहते हो, तो अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन, मेरा बाबा। तो जब जैसे ही कहो मेरा, उस समय याद करो मेरा बाबा। अब ये मुश्किल है क्या, कभी कभी भूल तो जाते हो, मेरा बाबा भूल जाते हो, ये मेरा वो मेरा वो मेरा याद करते हैं ना, तो बाबा कहते कभी भूल जाते हो। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता है, हाँ मेरा भले कहो, कोई नया शब्द नहीं देते बाबा, जो सदैव कार्य में लाते हो दो शब्द, मैं और मेरा। सारे दिन में अगर गिनती भी करो ये दो शब्द मैं और मेरा कितनी बार बोलते होंगे, मैं और मेरा। तो मैं कौन और मेरा कौन, ये दादी जानकी जी नशे से कहती थी, मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन और मेरा कौन। कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं, क्यों उनको मुश्किल लगता है पुरुषार्थ करना, सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए। अब मुश्किल क्यों लगता है, बस बिंदु 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 कोई मैं देखूं, बिंदु सामने आ जाए, बिंदु 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 ही करते रहते हैं और बिंदु खिसक जाती है। अब बिंदु ऐसे सोचेंगे तो खिसक जाएगी ना, बड़ी चीज होती है तो चलो सामने रहेगी, तो अब बिंदु खिसक जाती है। अब बिंदु तो है लेकिन कौन सी बिंदु है, कौन सी बिंदु है, मैं कौन हूं, हाँ मैं कौन हूं, ये अपने स्वमान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। मैं बिंदु तो हूं लेकिन कौन सी बिंदु हूं, तो बाबा कहते ये अपने स्वमान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाता है, अब ज्योति बिंदु और ज्योति बिंदु खिसक जाती है, पर कौन सी बिंदु हूं, स्वमान सारे लाओ, हाँ मैं विश्व कल्याणकारी बिंदु हूँ, मैं महादानी बिंदु हूँ, मैं पूर्वज बिंदु हूँ, ये अगर साथ होगा तो बेहद में चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो मुश्किल हो जाता है केवल मैं ज्योति बिंदु का, सहज पुरुषार्थ है मौजों का पुरुषार्थ है, इसलिए मुश्किल नहीं। तो सहज और मौजों का पुरुषार्थ करो। इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो, सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो पुरुषार्थ, ये हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है, फिर हाथ उठाओ, हाँ हो सकता है, अब थोड़ा थक गए हाथ उठा नहीं रहे, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, दोनों साथ हो सकता है, सहज भी पुरुषार्थ हो और श्रेष्ठ भी हो, हाँ दोनों हो सकता है, तो दोनों साथ हो सकता है। डबल फॉरेनर्स बोलो, हो सकता है, डबल फॉरेनर्स कितने बैठे, हाथ उठाओ डबल फॉरेनर्स, देखो यहाँ थोड़े है, बाकी ज्ञान सरोवर में बहुत है, वहां तो यूथ रिट्रीट भी चल रही है, बच्चों की रिट्रीट भी चल रही है। तो बाप दादा, तो डबल फॉरेनर्स बोलो, हो सकता है, तो बाप दादा देखेंगे, अभी सबने हाथ उठाया तो बाप दादा देखेंगे। बाप दादा तो चेक करते रहते हैं ना, हर एक की स्थिति को बाबा चेक करते रहते हैं। तो मुश्किल योगी कौन कौन बनता है, सहज योगी का ये मतलब नहीं है। अब कई उसको उल्टा उठा लेते हैं सहज योगी का, तो ये मतलब नहीं है सहज योगी का कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो। ठीक है, हाँ अमृत वेले उठे न उठे चलेगा, ठीक है बाद में कर लेगी, अलबेलापन है। हाँ ठीक है, बाबा को याद नहीं किया, ठीक है भोजन पर बाबा को याद नहीं किया, कोई बात नहीं, चलो पहली गिट्टी तो खा ली, फिर याद आ गया, चलो दूसरी गिट्टी खिला लेंगे। हाँ ऐसे भी कहते हैं। सहज योगी का ये मतलब नहीं कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो, श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी हो, पांडव उठाओ हाथ भाई, सहज योगी श्रेष्ठ योगी, हाथ उठाओ फिर से, बाबा ने हाथ उठवाया है। ठीक, सहज योगी जो है वो हाथ उठाओ, देखना टीवी में आ रहा है। हाँ भाई कर रहा था, टीवी में दिखा रहा है, तो टीवी में आ रहा है, मुबारक हो। तो ये वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी है, अलबेले नहीं बनना। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष ये लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त है, उस दिन भी बाबा ने 5 खजाने मुख्य बताए, ज्ञान गुण शक्तियां तो है ही, उसके साथ क्या जोड़ा, समय का खजाना और संकल्पों का खजाना। तो बाबा फिर से याद दिला रहे हैं, तो खजाने जो प्राप्त है, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियां हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा खजाना इन पांचों में से, कौन सा खजाना सबसे बड़ा इन पांचों में से, संकल्पों का खजाना है, गीत भी है ना, संकल्पों का खजाना बहुत है। तो हमें लास्ट में ये गीत बजाना, संकल्पों का खजाना है ना वो गीत। हाँ तो बाबा कहते हैं सबसे इन सभी खजानों को, तो सबसे बड़ा खजाना संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प शुद्ध संकल्प। अब खजाना तो है पर कौन सा संकल्प लाना है, कौन सा संकल्प, खजाना तो है लेकिन श्रेष्ठ संकल्प और शुद्ध संकल्प, इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना, खूब बांटो, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो, खूब बांटो। कितने क्लासेस होते हैं खजानों को कैसे बढ़ाएं, सफलता मूर्त कैसे बने, तो खजानों को जितना बांटेंगे उतने बढ़ेंगे, उतना सफलता मूर्त बनेंगे। तो बाबा कहते हैं खूब बांटो, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो, खूब बांटो। क्यों, सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना, तो यही इस वर्ष की विशेषता सदा कायम रखना। सफल करना है और सफलता है ही है, सभी कहते भी हो ना कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है अधिकार, तो सफल करो और सफलता प्राप्त करो। कोई भी कार्य करो, कोई न कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते चलो। वरदान मिल गया बाबा का, सोचो सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसका अधिकार हो सकता है। क्यों क्यों हम ब्राह्मणों का ही अधिकार है सफलता का अधिकार, क्यों, क्योंकि बाप ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है। बाप दादा सदा कहते हैं कि एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। सफलता के सितारे हो ना, अब हाथ उठाओ जो कहते हैं हम सफलता के सितारे हैं। देखो किसने नहीं उठाया, तो बाबा फिर पूछते हैं या मेहनत के सितारे हो, अब कौन होगा मेहनत का सितारा, कोई कोई तो होंगे ना, तो या मेहनत के सितारे हो। बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप में देखते हैं। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया? ब्रह्मा बाबा की याद बाबा दिला रहे हैं, जैसे ही शिव बाबा ने कहा ये तुम्हारी जो भी चल अचल प्रॉपर्टी है सब बहनों के नाम पर कर दो, विल कर दो, और बाबा ने कुछ नहीं सोचा आगे पीछे, कुछ भी नहीं सोचा और सब सारा कुछ विल कर दिया। फिर जो बड़ा बेटा था बेटे से भी नहीं पूछा, नहीं तो बेटा अधिकार रखता है ना, हाँ मेरा मेरे पिता की प्रॉपर्टी मेरी मेरी है, तो थोड़ा उसने विरोध भी किया बड़ा बेटा जो था। छोटा तो नारायण दादा था, वो तो बाबा का हाँ जैसे बाबा के साथ ही था, लेकिन बड़े बेटा वो तो शादीशुदा था, उनके बच्चे भी थे, तो उसने थोड़ा विरोध किया, पर बाबा ने कहा नहीं ये भगवान को मैंने अर्पित किया है, ये मैं नहीं दे सकता हूँ। तो देखो बाबा कहते हैं हाँ, तो अंत तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया। चलो और बातें तो धन तो अलग चीज है, लेकिन अंत तक अपना समय भी सफल किया, लास्ट घड़ी तक। कैसे सफल किया? अव्यक्त होने से पहले मुरली चला के आए। तो बाबा कहते हैं अंत तक सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया, चाहे कर्मातीत भी बन गए फिर भी कितने पत्र लिखे। बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, सवेरे तबीयत ठीक नहीं थी, दादी जी ने उनको कहा बाबा आज मत चलो बाहर, क्योंकि 18 जनवरी आप सोच सकते हैं जनवरी आई है कितनी ठंडी होगी, लेकिन बाबा आप बाहर नहीं निकलो क्योंकि अंदर तो कमरे में गर्म थे। तो हम मैं जाकर योग करा के आती हूँ और बाबा की तरफ से कुछ सुना के आती हूँ, बड़ी दादी जी ने कहा। तो बाबा ने कहा ठीक है। फिर दिन में तो धूप निकल आई तो बाबा ने पत्र लिखे, एक पत्र नहीं छोड़ा, एक पत्र भी नहीं छोड़ा। शनिवार का दिन था, वो दिन में भी पत्र आए थे, वो भी बाबा ने 4 बजे पत्रों का जवाब दिया। बाबा ने कहा एक पत्र भी नहीं छोड़ना। फिर दादी जी को ले गए, सब जो भी हमारा स्टॉक है जहाँ यज्ञ के अंदर वो दिखाया, जैसे आज ही हैंडओवर कर रहे। और फिर भोजन थोड़ा जल्दी हो गया, 7:30 की बजाय 6:30 भोजन हो गया, और फिर बाबा 7:30 मुरली चलाने आए। 8:30 तक या जो भी 8:45 के अंदर बाबा कमरे में गए, नहीं तो 9:45 जाते थे। रात को मुरली होती, एक क्लास बाबा कराते थे और बाबा चले गए 9:45। और दादी जी को संकल्प आया कि बाबा तो अभी कमरे में ही होंगे, मैं बाबा को गुड नाइट करने जा रही हूँ। और जैसे ही बाबा के कमरे में आई तो देखा बाबा बैठे हैं, टांगे नीचे आंखें बंद, बस वो अंतिम घड़ी थी बाबा की। और बाबा बाबा कहा दादी ने, और तो बाबा ने आंखें खोली और हाथ बाबा ने बच्ची को दिया या दादी ने हाथ दिया बाबा को, और बस वो लास्ट घड़ी थी और बाबा वतनवासी बने। तो बाबा कहते हैं कि चाहे कर्मातीत भी बन गए फिर भी कितने पत्र लिखे, समय सफल किया ना, लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए, लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर, वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। सभी निश्चय से कहते हैं ना, ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है। उस दिन तो बाबा ने कहा अगर ब्रह्मा को छोड़ दिया खाली शिव बाबा ज्योति बिंदु तो शिव बाबा तक पहुंचेगा भी नहीं। तो बाबा कहते हैं हाँ तो जरूर ब्रह्मा बाबा से भी इतना ही प्यार हो। तो सभी निश्चय से कहते हैं ना, ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी क्या है? जो बाप को प्रिय था वो बच्चों को भी प्रिय हो, तब कहेंगे प्यार है। समय संकल्प और सर्व खजाने सफल करो, व्यर्थ नहीं हो। प्यार की निशानी है प्यार की निशानी दूसरी क्या है? प्यार की निशानी है तो प्यार की निशानी है फॉलो फादर, ये है प्यार की निशानी, जो बाबा ने किया वो मुझे भी करना है, फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई, जो सोचा वो सेकंड में किया, सिर्फ सोचा नहीं, सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो ऐसे हो हाँ, फॉलो करने वाले हो ना, अच्छा है। तो हाथ उठाए बच्चों ने, अच्छा है। आज बहुत आ गए हैं, उस समय भी व्यक्त बाप दादा के सामने बहुत आ गए थे, न्यू ईयर मनाने के लिए आए हो ना, अच्छा है। तो वो क्या शांतिवन डायमंड हॉल भी छोटा हो गया, इतना हाउस फुल हो गया था, जो बाहर बैठे थे आंगन में हाँ, जहाँ अपना भी शक्ति स्तंभ है, तो वहां पर भी बैठे थे कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने, और कॉन्फ्रेंस हॉल में भी बैठे थे। और यहाँ तो मधुबन ने कहा था कि यहाँ ही आप सुनो जो यहाँ सुन सकते हैं, क्योंकि नीचे बहुत हाउसफुल हो गया है। तो देखो बहुत आ गए थे, आज बहुत ही आ गए हैं न्यू ईयर मनाने के लिए, अच्छा है। अगर हॉल छोटा पड़ गया तो दिल तो बड़ा है ना, बाबा का दिल तो बहुत बड़ा है। देखो दिल बड़ा है तो समा गए ना, सब समा गए। आज सभा में 18-19 हजार भाई बहने बैठे हैं, उस समय तो इतने और भी कोई मकान तो नहीं थे, कितने जो अभी बने हैं सारे, तो टेंट लगाई थी बाहर, पलंग बिछाए थे। तो फिर बाबा कहते हैं सब समा गए ना, सभी बाहर बैठे हुए भी सुन रहे हैं ना, बाहर बैठने वाले सुन रहे हैं, वो तो दिखाई नहीं देंगे हॉल में, वो नहीं है, बाहर बैठे हैं। बाप दादा ने सुना कि फॉरेन में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले रात के 12 बजे बैठते हैं, क्योंकि वो 5 घंटा आगे है। अभी इस समय जैसे 7:45 बज रहे हैं, तो वहां समझो 5 घंटा आगे, तो कितने बजे होंगे, हाँ दिन के 12 बजे उस ना होगा, तो उस समय रात के 12 बजे होते थे जब ऑस्ट्रेलिया वाले सुनते थे। तो रात को 12 बजे उठ करके मुरली सुनते थे, और मुरली सुनते सुनते सब सुनते थे, देखते थे बाबा को, और 4 बज जाते थे, अमृत वेला भी वहीं करते थे। तो ऐसे थे बाबा के, ऑस्ट्रेलिया के बच्चे। तो बाबा कहते हैं तो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया वाले रात को 12 बजे बैठते हैं और 4 बजे अमृत वेला करके उठते हैं। तो बाप दादा ने भी आज ऑस्ट्रेलिया को याद किया, सुन रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया वाले भी सुन रहे थे। यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले हाथ उठाओ, बैठे कोई ऑस्ट्रेलिया वाले, देखो बैठे हैं 2 जने, हाँ तीन बैठे ऑस्ट्रेलिया के, त्रिमूर्त। तो बाबा कहते ऑस्ट्रेलिया वाले हाथ उठाओ, त्रिमूर्ति मुबारक पहले ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का फिर सभी को। ऑस्ट्रेलिया वाले इतना दूर रात जाग करके बाबा की मुरली सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप भी उस समय थे जब बाबा की मुरली चली थी, तो आप रात को सुनते थे ऑस्ट्रेलिया वाला? नहीं, तब आप ज्ञान में नहीं थे। अच्छा, कौन और जो ऑस्ट्रेलिया वालों ने हाथ उठाया, उठे थे कोई, आप उठे थे? हाँ देखो ये हाथ उठाया, हाँ भाई दिखाओ अपने आप, अपनी शक्ल दिखाओ, रात को 12 बजे से उठो 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 उठो, सबको शक्ल दिखाओ भाई, 12 बजे से 4 बजे सुबह तक, पीछे मुड़ के दिखाओ अपना चेहरा, वो दूसरा भी। बहुत अच्छा। तो 12 बजे बैठते हैं और 4 बजे अमृत वेला करके उठते हैं। तो बाप दादा ने भी आज ऑस्ट्रेलिया को याद किया, सुन रहे हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले हाथ उठाओ, तो त्रिमूर्ति मुबारक पहले ऑस्ट्रेलिया को फिर सभी को। इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया ना, सफल करो, सफलता है ही, ये सभी ने पक्का किया, सफल करना है, व्यर्थ नहीं। संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं है। व्यर्थ के तो 63 जन्म समाप्त हुए, अब ये छोटा सा युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे, अगर अभी समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। सुना, बड़ा प्रलोभन है। पूरा आधा कल्प आप पूरा राज्य अधिकारी बनेंगे अगर पूरा समय अभी सफल करेंगे तो। अगर कभी कभी सफल करेंगे तो राज्य अधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। समय सफल की प्रारब्ध ये है, सफल किया और सफलता को पाया और भविष्य राज अधिकारी बने। श्वास सफल कर रहे हो तो, हर श्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म ही स्वस्थ रहेंगे। चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगा, अभी तो हो जाता है ना हार्ट फेल, चलते चलते हार्ट फेल नहीं होगा। किसकी किसकी हार्ट रुक जाती है, किसकी नलियां बंद हो जाती है ना, होता है ना कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, किसकी नलियां बंद हो जाती है, वो सब नहीं होगा। ज्ञान के खजाने को भी सफल करो, पहले बताया समय, फिर बताया श्वास, फिर तीसरा है ज्ञान के खजाने को भी सफल करो। तो ज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञान को कैसे सफल करेंगे? ज्ञान का अर्थ है समझ। वहां इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की जरूरत नहीं होगी, राजा को कोई सलाहकार की जरूरत नहीं होगी, मंत्रियों की जरूरत नहीं होगी। आजकल तो देखो शपथ लेते ही पहले मंत्रिमंडल बनाते हैं, है ना, शपथ बाद में लेते, पहले कौन मंत्री होंगे तो उनकी भी शपथ दिलाते हैं क्योंकि ये मंत्री बनेंगे या कैबिनेट में आएंगे। तो आजकल तो देखो शपथ लेते ही पहले मंत्रिमंडल बनाते हैं, वहां साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे, वो उनके सलाहकार भी होंगे राजा के, वो राजा ही इतना समझदार है। रॉयल फैमिली हर एक दरबार में बैठने वाले ताजधारी होंगे, भले वो राजा नहीं होंगे, जो रॉयल फैमिली वाले होंगे परिवार वाले, वो भले रॉयल फैमिली के कहलाएंगे तो भी वो ताज पहन के सभा में बैठेंगे। तो रॉयल फैमिली हर एक दरबार में बैठने वाले ताजधारी होंगे। रॉयल फैमिली कम नहीं होगी, चाहे तख्त पर नहीं भी बैठे लेकिन मर्तबा एक ही जैसा होगा। इसलिए ये नहीं सोचो कि तख्त नशीन बहुत तो बहुत थोड़े बनेंगे, लेकिन आप लोग भी राज दरबार में राज्य अधिकारी के रूप में होंगे, भले रॉयल फैमिली में होंगे। आपके सिर पर भी ताज होगा और आपका पूरा अधिकार होगा। तो क्या बनेंगे, नंबर वन या नंबर वार, क्या बनेंगे? हाँ, नंबर वन जो कहते आते थे भाई, नंबर वन, अच्छा सब नंबर वन, तो बाबा कहते सबने का नंबर वन, नंबर वन बनेंगे या नंबर वार, तो क्या करना पड़ेगा पता है? सबने का नंबर वन, तो बाबा ने कहा अगर नंबर वन बनेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाबा को क्या करना पड़ेगा? हिम्मत दिखाई है, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन वन नंबर बनने के लिए पहले विन करना पड़ेगा। पहले तो बाबा ने कहा फिर इतने सारे सिंहासन बनाने पड़ेंगे, लेकिन फिर वन बनने के लिए विन करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, उसके बिना थोड़ी वन बनेंगे। लेकिन वन नंबर बनने के लिए पहले विन करना पड़ेगा। कर रहे हैं ना, करेंगे ये नहीं कहना, कर रहे हैं, करेंगे ये नहीं कहना, कर रहे हैं। दूसरे भी सुन रहे हैं, आज सुना क्या बाबा ने सुना कि पुराने सिंध के ब्रह्मा के साथी बहुत आए हैं, सिंधी बहुत आए थे, तो वो कई तो ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने साकार में ब्रह्मा बाबा को सिंध में देखा था, हैदराबाद में या कराची में, वो भी उस समय आए होंगे। तो पुराने सिंध के ब्रह्मा के साथी बहुत आए हैं, तो हाथ उठाओ। हाँ, उसमें उन्होंने हाथ उठाया। अब उनके जो पोतरे दोतरे होंगे वो तो बस आए और फिर ज्ञान में तो नहीं चले, तो फिर उनके परिवार वाले तो उनको भी लेकर के आए हैं, छोटे बच्चे भी आए हैं, तो छोटे बच्चे उठो, परिवार के परिवार आए हैं। अच्छा, कोई कमाल दिखाएंगे ना, अभी तो बाबा के बच्चे बन गए हैं, तो बाबा पूछते कोई कमाल दिखाएंगे ना, क्या दिखाएंगे? तो उन्होंने कहा बाबा मैसेज देंगे, बाबा का संदेश देंगे। अब वो तो बाबा ने कहा कर ही रहे हो, संदेश तो दे ही रहे हो। अच्छा तो उनको दादी जी ने कहा बाबा 38 आए हैं, 38 सिंधी लोग आए हैं, तो क्या कमाल करेंगे। चलो ज्यादा नहीं कहते हैं, छोटी सी बात कहते हैं बाबा, छोटी बात कहते हैं। करने के लिए तैयार हो, बच्चे भी कमाल करेंगे ना, तो बच्चों ने क्या कहा 38 लाख बनाएंगे, उस सिंधियों ने कहा 38 लाख बनाएंगे। तो बाबा ने उनको कहा पदम गुना मुबारक हो, 38 लाख बनाएंगे 38 लोग। आपने तो बहुत बड़ी बात बता दी 38 लाख, लेकिन बाप दादा छोटी बात कहते हैं, वो एक 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 को लाओ। भले 38 लाख भले नहीं लाओ, पर एक जना एक को लाए, तो एक 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 को लाओ, लाना है एक एक को लाओ। बच्चे हैं तो बच्चों को लाओ, माताएं हैं तो भाइयों या बहनों को लाए, लेकिन एक एक को एक लाना है। हाँ, ईच वन टीच वन, बाबा ने ये भी नारा दिया था, ईच वन टीच वन, एक एक को लाए। ये ग्रुप देख लो, आप इसको गाइड करना। दादी जानकी ने कुछ आज सामने बैठी थी, दादी जानकी तो बैठी थी, दादी जानकी को कहा देखो इस ग्रुप को देख लो, तो इनको आप इनको गाइड करना। अगले साल लेकर ही आना है, एक एक को ले आए, डबल ग्रुप लेकर आना। और सचमुच लेके भी आए थे, एक एक को लेकर आया था, डबल ग्रुप लेकर आना। बाप दादा यही चाहते हैं कि जहाँ से आदि हुई है वहाँ ही प्रत्यक्षता होनी है। रहम आता है ना, ब्रह्मा बाप के देश के वासी हो तो देशवासियों से प्यार होता है। अभी तो बहुत सिंधी आते हैं, जहाँ देखो सिंधी लोग, हर सेंटर पे होंगे सिंधी जरूर होंगे, तो आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। तो देशवासियों से प्यार होता है। आपके पास खजाने बहुत है, गुणों का खजाना कितना बड़ा है, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है, ज्ञान तो बताया, फिर गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है। तो गुण दान, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी आए, चाहे संबंध में आए चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको कोई न कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे देना, कोई खाली हाथ नहीं जाए। और कुछ नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, ये मीठे बोल भी गिफ्ट देना। दो ज्ञान के बोल, बाबा के संदेश के बोल, ये केवल वो बोल ही देना तो बाबा कहते हैं वो भी बड़ी गिफ्ट हो जाएगी। अब वो वरदान महसूस होगा उनको, वो मीठे बोल भी गिफ्ट देना। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है तो एक दो का मुख मीठा कराते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं मुख मीठा तो कराना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना है। मीठा मुखड़ा माना मुस्कुराना है, और मीठे शब्द बोलना है, ये है मीठा मुखड़ा। और मीठी मीठी चीज तो देनी है ना, जो भी आते उनको टोली तो देते ही है। सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा। इतनी मधुरता जमा है ना, जो आपका मुख भी मीठा बोले, ऐसे नहीं कड़वा बोले, इतनी मधुरता जमा है ना, जो बांटो तो भी भरपूर रहो, और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस वर्ष नोट करना, क्या नोट करना, जो भी आत्मा आई उसको कुछ दिया। अगर सुनने वाला नहीं है तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना। चलो आपको पता है ये ज्ञान सुनने वाला नहीं है, परंतु कम से कम मीठी दृष्टि देना, उसको आत्मा की दृष्टि से देखना। तो बाबा कहते हैं तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना, लेकिन देना जरूर, खाली नहीं जाए। ये तो सहज है ना या मुश्किल है? अच्छा, अब एक सेकंड में मन की ड्रिल याद है, फिर बाबा ने ड्रिल कराई। हर एक सारे दिन में कितनी बार ये ड्रिल करते हो ये नोट करो। ये मन की ड्रिल जितनी बार करेंगे उतना ही सहज योगी सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरी तरफ मनसा एक्सरसाइज। मनसा एक्सरसाइज, हाँ, मन को बुद्धि को कहाँ ले जाओ, सूक्ष्म वतन परम धाम स्वर्ग, तो ये मन की एक्सरसाइज। और दूसरा मनसा सेवा, सब आत्माओं को सकाश। तो बाबा कहते एक तरफ मनसा सेवा, दूसरी तरफ मनसा एक्सरसाइज, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता बन सकते ना, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं, फरिश्ता बनके ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। अच्छा, चारों तरफ से बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में चाहे पत्रों के रूप में, बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। ढेर कार्ड आते थे, पूरा एक तरफ तो सारी स्टेज ही जैसे एक तरफ भर जाती थी कार्ड्स और पत्रों के साथ। बाप दादा जानते हैं कि हर बच्चा यही समझते हैं मेरी याद बाबा को देना, लेकिन मिल गई, आपने वहां से कहा और बाबा को यहाँ मिल गई। याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करे। अच्छा, आप सभी को भी नव जीवन, नव युग और नए वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 पदमा पदम गुण मुबारक और दिल की दुआएं, याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई दी, लास्ट में नए वर्ष की बधाई सबको दी। उस समय पता नहीं, मुझे याद नहीं है, 12 बजे तक बाबा बैठे और वो 12 बजे घंटे बजाते थे, 12 घंटे वो घंटा था इतना बड़ा, और 12 बजते थे और फिर बाबा लास्ट में विदाई देते थे। तो बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई दी। चारों ओर के बहुत मीठे बहुत प्यारे बच्चों को पदम पदम गुना न्यू ईयर की मुबारक हो। ये जो घड़ी बीत गई है, ये है विदाई और बधाई की घड़ी। एक तरफ विदाई देनी है, पुराने साल को विदाई देनी है, जो अपने में संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हैं उसको विदाई, और सदा के लिए विदाई देना, और आगे उड़ने के लिए बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान, स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर वन विशेष आत्मा भव। स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर वन विशेष आत्मा भव। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर वन बने, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना जानना याद रहता है ना, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान, मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो, तो नंबर वन विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। रेस किसने और रीस किसने होती है? बुराई में रीस होती है, ये कर रहा है मैं भी करूंगा, ये क्यों कर रहा है मैं भी करूंगा, तो ये रीस हो गई। पर अच्छाई में रेस करो, ये कर रहा है मैं और इनसे आगे जाऊं, तो पुरुषार्थ में आगे जाऊं, उसमें भले रेस करो, पर रीस में नहीं आगे जाना है, वो कर रहा है मैं भी करूं। तो बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। तो बुराई में रीस होती है और अच्छाई में रेस होती है। तो देखो, तो रेस नहीं करो, बाबा कहते रेस करो। आज का अव्यक्त इशारा, आज 29 तारीख है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है। अगर संतुष्टता की विशेषता है तो और विशेषताएं को भी ये संतुष्टता समीप लाती है। लेकिन सदा संतुष्ट रहो, परिस्थिति कितनी भी बदले लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। पर स्थिति है ही बदलने वाली, वो परिस्थिति है बदलने वाली, लेकिन स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। आज का जो सकाश देने की शक्तिशाली मनसा सेवा कैसे करनी है, पहला है स्वमान, मैं मास्टर वृक्षपति हूँ, ये स्वमान रखना आज, मैं मास्टर वृक्षपति हूँ। योग अभ्यास क्या करना है, मैं आत्मा बीज रूप हूँ, मुझ में सारे वृक्ष का ज्ञान समाया हुआ है, मैं आत्मा अपनी बीज रूप स्थिति में स्थित हूँ। बीज रूप बाबा के साथ कंबाइंड होकर एकाग्रता की शक्ति से सर्व आत्माओं को हलचल से बचाने में सहयोग कर रहा हूँ। धारणा क्या करो, बीज रूप स्थिति में रहने का अभ्यास करो, ये धारणा करो आज। चिंतन, दुनिया में कौन कौन सी हलचल है उससे स्वयं और सर्व को कैसे बचाएंगे, हलचल तो बहुत है तो स्वयं को कैसे बचाएंगे उस पर चिंतन करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद डबल विदेशियों को आज का प्रोग्राम देंगे।